जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान समय सार अनुशीलन भाग तीन को 38 पेज निकालो। यहां एक प्रश्न है ना, यदि जघन्य भाव से परिणमित ज्ञान गुण के साथ अदनाभावी रूप से रहने वाले रागादि भावों से ही बंध होता है तो फिर ज्ञान गुण को बंध का कारण कहना क्या अनुचित नहीं लगता? कल जो अपन ने कहा था ना कि पहले तो कहा ज्ञान गुण बंध का कारण है, फिर कहा कि ज्ञान गुण बंध का कारण कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा ज्ञान गुण का बंध का जघन्य परिणमन बंध का कारण है। फिर प्रश्न किया कि जघन्य परिणमन बंध का कारण भी कैसे हो सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उसके साथ में राग अवश्य रहता है और वो राग बंध का कारण है, इसलिए हम ज्ञान गुण को उसके साथ में रहने के कारण बंध का कारण कहते हैं। ये बात ऐसी ही हुई कि दूध कलारिन हाथ लख मद समझें सब ताही। कलारन के हाथ में दूध भी ले जाए ना वो तो समझते हैं कि शराब ले जा रही होगी, है ना? ऐसे ही बेचारा ज्ञान गुण उस राग की संगति में क्या आया कि उसको भी बंध का कारण कह दिया। तो विशिष्ट ने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया है कि भाई ये बात तो अन्याय है, रागई को कहो ना सीधी सकती बात है, बीच में ज्ञान गुण को कहने से क्या मतलब है, है ना? तो उत्तर कि अरे भाई इसमें उचित अनुचित का क्या सवाल है, जो वस्तु स्थिति है उसे समझना चाहिए और जो अपेक्षा हो उसे अच्छी तरह समझना चाहिए। मैंने जिनवाणी में जो अपेक्षा बताई है जैसा उसका स्पष्टीकरण किया है उसे समझना हमारा काम है और समझाना हमारा काम है। अब उसमें मीन मेघ निकाल कर वो ये गलत लिखा ऐसा डिसीजन देना हमारा काम नहीं है। अब मैंने कल कहा था ना कि 2000 वर्ष पहले 1000 वर्ष पहले बातें लिखी हैं, अब उनमें कोई संशोधन तो हो नहीं सकता। अब जो चीज हमारे सामने मौजूद है तो वो उसकी किस अपेक्षा से कहां क्या कथन है वो हमें समझना चाहिए, और फिर जब बहुत बड़ी गंभीरता से हम विचार करें तो हम उसके औचित्य और अनौचित्य पर भी विचार कर सकते हैं। आचार्यों ने किया भी है, लेकिन एक बात पक्की पहले से नक्की करके कि हमें उसको उचित ही सिद्ध करना है। ऐसी अदालत में नहीं कि हम निर्णय करेंगे और उचित होगा तो उचित कहेंगे और अनुचित होगा तो अनुचित कहेंगे। जो आजकल ये बीमारी थोड़ी पनप गई है यूनिवर्सिटी लेवल पर, खासकर प्रवचन सार में एक पंक्ति आती है माया चारेव इथीणम, उसका क्या है प्रकरण कि केवली भगवान का जो विहार होता है वो उसी प्रकार सहज होता है जिस प्रकार स्त्रियों में मायाचार सहज भाव से पाया जाता है। अब तुम को मायाचार्य ने ये उदाहरण दिया तो उदाहरण किस बात के लिए, अब उनके इच्छा तो है नहीं किनके, केवली भगवान के, कभी यहां से छोड़ के दूसरे गांव जाएं और समोसरण को विहार होता है तो विहार इच्छा पूर्वक के बिना कैसे होगा, और उनके पैर भी नहीं खुलते हैं ऐसे कदम नहीं बढ़ते, ऐसे पद्मासन में ही विहार होता है, खड़े हैं तो ऐसे खड़े ही चले जाते हैं, खड़े होने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि समोसरण में तो पद्मासन ही विराजमान रहते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये गलत है और अच्छा है, महिलाओं का अपमान है और ये है और वो है और उसको कुंड आचार्य, अरे कहाँ कुंड आचार्य, आचार्य परमिष्टी में है एक दो भव में मोक्ष जाने वाले परम वीतरागी संत, अरे बेबी किसी माँ के बेटे थे क्योंकि महिलाओं से ऐसा देश थोड़ी था, लेकिन ये लोक में और शास्त्र में एक प्रसिद्ध बात है कि और लोगों को जरा मायाचारी करने के लिए सोचना पड़ता है, प्लानिंग बनानी पड़ती है। क्या आपने कोई बात पूछी और मुझे सही नहीं बतानी है और उल्टी सीधी बतानी है, मैं दो मिनट रुकता हूं और सोचता हूं कि क्या बहाना बनाऊं, क्या बनाऊं, ये करूं। महिलाओं की ये विशेषता है, उन्हें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो फटाफट जो भी उनको मतलब करना है वो कह देती है। अब एक इतनी सी बात है, वो उनने स्वभाव देखा और उनने उदाहरण दे दिया, क्योंकि महिलाओं की निंदा की है ऐसी तो कोई बात है नहीं, महिलाओं से उन्हें कोई द्वेष है ऐसा नहीं है। तो इनने क्या कहा, नहीं नहीं इसे सुधार देना चाहिए, मतलब भूल है कि नहीं है इसको विचार की कोटी में नहीं रखा, वास्तव में तो हमें ये सिद्ध करना चाहिए कि भूल ही नहीं है, इसमें विचार करना है उस पर, तो और नहीं तो जो उदाहरण दिया उस उदाहरण देके समझ के आगे बढ़ो, सुधारी करके ख्याल में है ना है? शायद ही किसी महिला को आज तक ऐतराज हुआ हो, ऐतराज करने वाले भी पुरुष हैं, जैसे मैंने जिन्हें महिलाओं की वोट चाहिए, महिलाओं की अनुकूलता चाहिए, बस वो उनने मुद्दा उठा करके इस बात को फैलाया। और उन्होंने कहा कि मायाचारेव इत्थीणम, तो मायाचार है ना, तो उन्होंने कहा प्राकृत में मात्र का आचार कर दो इसे, मायाचार की जगह मातृकाचार, मातृकाचार माने जैसे मापने का व्यवहार महिलाओं में स्वाभाविक रूप से होता है। अब सवाल ना तो मातृकाचार का ऐतराज है और ना मायाचार से ऐतराज है, सवाल इस बात पर ऐतराज है कि हमने हमारी जवान कुंद को गलत सिद्ध करने के लिए खुल गई, हम उसका अर्थ सही यही समझ लें, समझिए ना, मैंने हमको हर बात में बस सुधारने की ली है, जिसे आता है ना उसमें संसार में विषबेल नारी, अब उसे सुधार दो, वो कई कभी उन्होंने उसे सुधार दिया। अरे आपको यदि नहीं दिखती है बात तो आप एक नई पूजन लिखो, उसमें जो तुम्हें लिखना है लिख दो, लेकिन पुराने कवि की पूजन में इस तरह के मतलब कोई गलती से कोई बात रह गई हो सुधारना वो एक अलग बात है, छपाई में गलती रह गई हो क्यों, और बुद्धिपूर्वक हम बिल्कुल सही लिखा हुआ है उनको कहते हैं हाँ यही है सब बात है, और फिर तुम उसे बदला बदली करते हो, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। और वो नुकसान क्या है कि एक दफे हमारे बदलने के लिए हाथ खुल गया ना, तो भगवान महावीर से लेके आज तक की वाणी बहुत अज्ञानी हैं ऐसे कि जिन्हें कुछ कुछ चीजें अच्छी नहीं लगेंगी और वे सब वहां बदल देंगे, तो जो आचार्यों का ओरिजिनल विचार है वो हम तक आ ही नहीं पाएगा। सवाल एक बात बदलने का नहीं है, बुढ़ी मर गई इसका कोई दुख नहीं है, मौत घर देख गई झगड़ा इस बात का है, मन ये बात लोगों को पचने लग गई तो बदला जा सकता है। हमारे आचार्यों ने इस मर्यादा को कभी भंग नहीं किया, यदि उनको कहीं लगा तो उन्होंने ये लिखा कि भाई एक अर्थ तो हमें तुमने ऐसा किया वो भी ठीक है, लेकिन मुझे दूसरा अर्थ इस प्रकार से भाषित होता है, कि उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कह दी। ऐसा ही यहां हुआ है जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी ऐसा ही हुआ। देखो इस प्रकार की आशंका आचार्य जयसेन के समक्ष भी उपस्थित हुई होगी क्या, और कुछ लोग ज्ञान दर्शन गुणों के स्थान पर अज्ञान दर्शन गुणों शब्द का भी उपयोग करते होंगे, यही कारण है कि वे लिखते हैं। अब ज्ञान की जगह अज्ञान दर्शन गुणों से, अब कितना फर्क है, ये जो ग्यारहवीं गाथा है ना उसके बारे में भी यही चक्कर है, व्यवहार आ भूयत्थो भूयत्थो देश दूध शुद्ध नयो, अब दो ही जगह भूयत्थो भूयत्थो लिखा है, نکال کے دیکھو تم کہتے. اب ایک جگہ ارتھ کیا ابھوتارتھ اور دوسری جگہ اس کا ارتھ کیا ابھوتارتھ. ہم نے کہنا مجھے تو ایک دم اٹپٹا انیائے جیسا لگتا ہے نا. اصلیت واسطہ میں جو ویوہارو ابھویتھو ہے نا, تو اپن سنسکرت میں تو وہ ایس کا نشان لگا دیتے ہیں, پلپت بولتے ہیں. کیا دیکھا ہوگا آپ نے کہیں گے, اب پراکرت میں نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہی نہیں, اس کا لوپ ہی ہو گیا. اب کیا کریں, ویوہارا بھویتھو اور ابھویتھو, بہو وچن میں ویوہار کا ویوہارا ہو جاتا ہے اور وسرگ وہاں لگتی نہیں ہے, اور وہاں بھویتھو کا بھویتھو ابھویتھو بھویتھو دونوں ایک ہی سے ہی ہو گئے. اب امے چند نے ایسا کیا ویوہار ابھوتارتھ ہے اور نشچے نے بھوتارتھ ہے, اور انہیں آگے آگم سے کسی نے ان میں اس وقت شنکا نہیں کی, اور جیسے ان تک آتے آتے لوگوں نے شنکائیں شروع کر دی, تو انہوں نے وہ ویاکرن کا نیم بھی بتایا, امے چند کی بات کو صحیح سدھ بھی کیا, اور انت میں یہ کہہ دیا کہ وہ ارتھ بھی نکال لو چلو تمہیں. کیا کہ ویوہار نئے بھی بھوتارتھ اور ابھوتارتھ کے بھید سے دو پرکار کا ہے, اور نشچر نئے بھی ابھوتارتھ اور بھوتارتھ کے بھید سے دو پرکار کا ہے. ایسا بھی دوسرا ارتھ کیا ہے اس کا. کیا اور پھر میں نے تو اپنی اس انشیلن میں کہ ان کی ساری اپیکشائیں کھولی ہیں کہ دو پرکار کا بھوتارتھ اور ابھوتارتھ نشچے کیسے, اور دو پرکار کا ویوہار بھوتارتھ اور ابھوتارتھ کیسے. بھوتم ارتھم پر دو دیتی تھی بھوتارتھا, تو آتما میں گیان درشن گن تو ہے نا, تو اس دشٹی سے وہ ستیارتھ ہو گیا. تو اسد بھوت ویوہار جیسا ڈھوٹا تو نہیں ہے نا, اس لیے کتھن سے ستیارتھ ہو گیا. اب نشچے نئے کو کتھن سے ستیارتھ کیسے کہیں, تو نشچے نئے کے چار بھید, یا شدھ نشچے نئے, ایک دیش شدھ نشچے نئے, شدھ نشچے نئے اور پرم شدھ نشچے نئے. تو پرم شدھ نشچے نئے کی اپیکشا تین نئےوں کو ویوہار کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں. تو جو تین پرکار کے نشچے ویوہار ہو گئے نا, تو ویوہار ابھوتارتھ ہے تو یہ ابھوتارتھ ہو گئے نا. مطلب بہت سنکھیپ میں نے آپ کو ابھی یہاں بتایا ہے, وہاں پڑھنا ہو تو وستار سے وہاں پڑھنا, گیارہویں گاتھا کے انشیلن میں. اب دیکھیں یہاں کیا کہتے ہیں, انہوں نے کیا کیا پھر, جیسنا چاری نے سات سو برس پہلے جو کچھ بھی امر چند سے ہٹ کر ہے جیسنا چاری میں, وہ سب میں نے اس میں لے لیا ہے. اس لیے یہ نہیں سمجھنا کہ اس میں جیسنا چاری کی کا سوادھیائے آپ کو نہیں ہوگا. کبھی ہم کو دونوں ٹیکا نہیں پڑھ پائی, ہمیں دونوں ٹیکا پڑھنے کو ملے تو وہ بڑھیا ہے نا, دونوں ٹکیاں اپلبدھ ہیں, انہیں پڑھنا چاہیے. لیکن یدی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہم نے اس میں سب دے دیا ہے. اسے پڑھ کر کے بھی آپ یہ بات نہیں نکل پائیں گے. کیوں رمیش؟ کیونکہ ہم نے تو ایسے پرشن اٹھا کر تم کو کھدیر کھدیر کے وہ بات رکھ کر اس کا شنکا سمادھان کیا ہے نا. وہاں تو سیدھے سے چار سے رکھا ہوگا, اب تم یہ بھی پڑھتے جانا اور وہ بھی پڑھتے جانا, کہ تمہیں دماغ میں ایک کوندھ ہے ہی نہیں کہ دونوں میں انتر ہے. جب وہ پڑھو گے تو ویسا ارتھ پڑھ لینا, یہ پڑھیں گے تو ہم ایسا پڑھ لیتے ہیں سارے, باقی 90% پاٹھک تو ایسے ہوتے ہیں. کیا ہم دو دو چار کہیں تو اسے آپ سن لیتے ہو, پھر دوسرے دن دو دو پانچ کہیں تو اسے شانتی سے سن لیتے ہو, اور آپ کو کوئی وکلپ بھی کھڑا نہیں ہوتا کہ کل تو آپ نے چار کی تھی آج پانچ کیسے کہہ رہے. یہ تو وکلپ بھی کھڑا نہیں ہوتا, سوچے ہوں وکلپ کھڑا ہو تو ہوئی ہے بھی کوئی اپیکشا. بات تو ایسی ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اپیکشا ہوتی ہے, لیکن وہ اپیکشا کیا ہے یہ سمجھنا بھی آپ کی انواری ہے سبھی کو. ہوگی کوئی اپیکشا, ایسا کہنے کا ادھیکار اسے ہے جو اس اپیکشا کو سمجھتا ہے. جو سمجھتا ہے تو وہ کیوں کہے گا, وہ تو سمجھا ہی دے گا نا, کہ نہیں ہے ابھی فرصت, نہیں ہے ابھی سمے کہ لمبی رامائن پوتھی کھولیں, تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہے کوئی اپیکشا, بس ختم, خیال میں ہے نا. لیکن جو اپیکشا نہیں سمجھتا ہے اسے یہ کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ ہوگی کوئی اپیکشا. वो अपेक्षा समझना बहुत जरूरी है। देखो अब ज्ञान दर्शन गुण बंध के कारण कैसे हो सकते हैं, ये जैसे ना चारिका है कोटेशन इन्वर्टेड कोमा में है ना, यदि कोई ऐसा कहे तो उससे कहते हैं कि यहां भाव यह है कि जब द्रव्य प्रत्यय उदय में आते हैं, द्रव्य प्रत्यय का मतलब समझते हो, प्रत्यय माने वो चार बताते हैं, चार प्रत्यय और तेरह प्रत्यय है ना, उदय में आते हैं तब जीव के दर्शन ज्ञान दोनों गुण रागादि रूप अज्ञान भाव से परिणमित होते हैं, और तब अज्ञान भाव से परिणमित होने से वे ज्ञान दर्शन गुण बंध के कारण होते हैं। तो वास्तव में तो रागादि अज्ञान भाव से परिणमित ज्ञान दर्शन गुण अज्ञान ही कहे जाते हैं। कुछ लोग तो अन्नान दंशन गुणेहिम इस प्रकार का पाठांतर भी पढ़ते हैं और मानते हैं, ये ऐसा उनने लिखा, ये पाठांतर प्राप्त होता है, गाथा ही ऐसी मिलती है, क्योंकि रागादि के साथ में सिद्ध जो ज्ञान गुण है उसे हम अज्ञान कहते हैं। अज्ञान माने जानना नहीं, अज्ञान माने रागादि से मिश्रित, इसलिए अज्ञान कहते हैं। मिथ्यात्व भी यहां नहीं कह सकते, क्यों, यहां वो तो चारित्र मोह के उदय की बात चल रही ना। आचार्य जयसेन 71वीं गाथा का अर्थ यद्यपि अमृत चंद्र के समान ही करते हैं, तथापि द्वितीय व्याख्यान के रूप में दूसरा अर्थ भी करते हैं जो इस प्रकार है। द्वितीय व्याख्यान मान दूसरा, ऐसा भी व्याख्यान हम कर सकते हैं, उनकी ये भाषा है द्वितीय व्याख्यान के रूप में। मैंने भैया नंबर एक तो तुम उनको ही रखना, यानी उनकी विनय मर्यादा पूरी बात रखी और अपनी बात भी रख दी है। मिथ्या दृष्टि ज्ञान गुण से काल लब्धि के बस से सम्यक्त प्राप्त होने पर वह ज्ञान गुण मिथ्या पर्याय को छोड़कर अन्य रूप यानी सम्यक ज्ञान रूप प्रणमन करता है, इसलिए वह ज्ञान गुण अथवा ज्ञान गुण रूप परिणत जीव सम्यक ज्ञानी जीव अबंधक कहा जाता है। उक्त दोनों अर्थों में मूलभूत अंतर यह है कि मूल व्याख्यान में तो जघन्य भाव का अर्थ यथाख्यात चारित्र के पूर्व की स्थिति ली गई है, और दूसरे व्याख्यान में मिथ्यात्व अवस्था को लिया गया है। अब देखो ये दिन में टिप्पणी नहीं लिखता तीन लाइन तो ये अर्थ नहीं निकाल सकते आप, आपका दिमाग तो वहीं घूम रहा है ना। लेकिन अब मैं बार बार ये भी कह रहा था ना आपको कि चारित्र गुण की बात है, चारित्र गुण की बात है, चारित्र गुण के विकारी प्रणमन की बात है ना। अब इन्होंने दर्शन गुण भी शामिल कर लिया है, अब इन पे बहस करके मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए कहते वो तो कहते थे यथाख्यात चारित्र के पहले की बात, और ये कह रहे हैं कि बस चौथे गुण स्थान के पहले की बात, वे कह रहे थे बारहवें गुण स्थान के केवल ज्ञानी होने के पहले की बात, और ये ले आए चौथे गुण स्थान के पहले होने की बात, ये दोनों में अंतर है। अब मैं मेरे मन में रहा नहीं जाता है, ये थोड़ी एक लाइन की टिप्पणी कर देता हूं। अमृत चंद्र ने क्यों नहीं किया, जयसेन ने कर दिया, जयसेन ज्यादा समझदार थे। अरे भाई जब तुमने दर्शन का प्रकरण खत्म ही हो गया, जब चारित्र गुण की अपेक्षा ही बात चल रही है, तो फिर जबरदस्ती उसे खड़ा करके उस अज्ञानी को क्यों ले रहे, ये तो चारित्र सम्य दृष्टि होने के बाद भी जो 72-71 प्रकृतियों का बंध होता है ये उसकी बात है, देनी होती ना 43 प्रकृतियों का बंध और बाकी का जिनका होता है, तो कभी इसको हम कह सकते हैं कि जरा कुछ ज्यादा ही उन्होंने उसमें होशियारी दिखाई कि हमें चंद्र ने जो नहीं दिखाई, माने ये कहने का मतलब ये है कि फिर क्यों उसको तो हम चारित्र गुण कहते थे, तुम चारित्र गुण कह रहे थे, मिथ्या दर्शन शामिल हो गया, अब जैसे ने कर दिया हम क्या करें, हम तो आपको बता दिया कि हमने चंद्र ने ये लिखा, तो जैसे ने ये लिखा, दोनों की अपेक्षाएं ये हैं और उसका अर्थ ये है, और हाँ क्या उचित अनुचित है हमारे चित्त में आया تھوڑا بنے پوروک مریادا میں دبی جوان سے اسے بھی کہہ دیا، اتنی سی بات ہے بس. چلو آگے، آپ کو سوچنے کے لیے راستہ کھولا ہے شانتی لال جی، کہنے نہیں نا کہ آپ سوچو، ادھیئن کرو گہرائی سے، دیکھو. یہاں پرشن اپستھت ہوتا ہے کہ اپنا 172ویں گاتھا کی بات کر رہے ہیں ہم، یدی گیان گن کا جگھنیہ بھاؤ بندھ کا کارن ہے تو پھر گیانی کو نراشرب کیسے کہہ سکتے ہیں. اب وہاں تو پرشن کیا تھا کہ گیان گن کا جگھنیہ پرنمن بندھ کا کارن ہے تو اس کے ساتھ جو راگ ہوتا ہے وہ بندھ کا کارن ہے، تو راگ کو بندھ کا کارن کہو، گیان گن کو بندھ کا کارن کیوں کہتے ہیں، یہ پرشن تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بندھ ہو ہی رہا اور آشرب ہو ہی رہا، اب گیانی کو ہے نا پرکرن، تو انہوں نے زبردستی میں متھاپ لگا دیا نا، پھر اسے اجانی پہ لے گئے. دادا ابھی خیال میں آئی نا بات، کبھی مطلب وہ پرکرن کی سوکھتا ہمارے دھیان میں سے ہٹ جاتی ہے. آگے کی بات تو وہی چل رہی نا، سمیہ دشتی کی ہے. اب انہوں نے متھاپ کے ادے کی بات لے لی اس میں، تو پھر لے کے پہلے گنستان میں لے گئے، تو پھر وہ کنفیوژن ہو جاتا ہے نا. اپن کہتے ہیں گیانی کو بند نہیں ہوتا، اب پرشن تو گیانی کو بند نہیں ہوتا چل رہے، اب تو اجانی کو بند ہوتا ہے، یہ ایک کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ارے اجانی کو بند ہوتا ہے تو کئی ہیں، کئی رہے، اس میں شنکا کا ہے. آیا سمجھے نا؟ اب چلو آگے ہیں. اب جو یہ گاتھا پڑھنا پڑی تھی نا کہ درشن گیان چارتر جب جگھن بھاؤ سے پرنمت کرتے ہیں تو گیانی انیک پرکار کے پرگل کرموں سے بنتا ہے نا. ابھی اس کی اپن آتم خیاتی کا ارتھ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی ٹیکا میں ایک نئی چیز پرویش کر گئی جو کہ مول گاتھا میں نہیں ہے، ٹیکاؤں میں ہے. ٹیکا میں کیا ہے کہ بدھی پوروک اور ابدھی پوروک، انہوں نے کہ گیانی کو بند نہیں ہوتا، اب وہ بند ہوتا ہے تو انہوں نے کہا وہ ابدھی پوروک راگ والا بند ہوتا ہے، بدھی پوروک راگ والا بند نہیں ہوتا. اس کو اس طریقے سے انہوں نے ابند اور بند دونوں باتیں سدھ کی. سمجھنا کیا؟ ابھی سمسیا یہی چل رہی نا کہ گیانی کو بند ہوتا کہ نہیں ہوتا، اور ابھی تک اپن نے جو منتھن کیا اس کے آدھار پر اسی نشکرش پر پہنچے ہیں نا. کون سا نشکرش؟ کہ بھئی وہ چاہت موہ کی اپیکشا جو بالی پرکتیاں ہیں ان کا بند ہوتا ہے، اور نیچے میں جو 41 پرکتیاں 43 پرکتیاں ہیں ان کا بند نہیں ہوتا. اسی پہ پہنچے نا، تو بند ہوتا بھی ہے اور نہیں ہوتا بھی ہے، یہی نشکرش رہا نا. اب اس کی بات وہ کرتے ہیں، ہوتا بھی اور نہیں ہوتا، ہوتا بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے اس کے بھید کیے بدھی پوروک راگ اور ابدھی پوروک راگ، ایسا بٹوارا کیا. اندر سمجھے نا؟ اب بدھی پوروک راگ اور ابدھی پوروک راگ کے ارتھ میں بھی مت بھید ہے. جب پانڈے راجمل جی جو ہیں کلش جی کا کار، وہ الگ ارتھ کرتے ہیں، اور پنڈت جے چند جی چھاوڑا الگ ارتھ کرتے ہیں. اور چونکہ بناسی داس نے ناٹک سمے سار پانڈے راجمل جی کی کلش جی کا کے آدھار پر لکھا ہے، اس لیے بے ان میں وہ بات ملتی ہے، میں نے پانڈے راجمل جی میں اور کلش جی بنارس داس کے ناٹک سمے سار میں ایک ارتھ میں نکلتا ہے، اور پھر جے چند جی چھاوڑا دوسرا ارتھ کرتے ہیں. ابھی دونوں ارتھ بھی میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، پھر اپن پڑھ لیں گے شانتی سے، اسے نہیں پڑھ پائیں گے تو گھر پہ پڑھ لینا تم. ابھی ایک ویاخیان اپنے پاس اور ہے کل کا، ہے نا. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک کوئی ویوستھت جگہ پر اپنا چھوٹے، تو پھر اپن آ کر شروع کریں گے تو ویوستھت جگہ سے ہی شروع کریں گے. اور کوشش یہ ہے کہ جب ہم وہاں سے آئیں گے پھر بمبئی سے لوٹ کے، تو اس دن نہیں تو دوسرے دن سے پھر شروع کر دیں گے، جس سے اپنے کنٹینیوشن میں اپن ادھک سے ادھک اس پرکرن کو نپٹائیں. کیا ابھی کیا ہے دونوں کے انتر، ارتھ میں انتر کیا ہے؟ دیکھو گرودیو شری کے پرچنوں میں بھی یہ بات حاوی ہو جاتی تھی کلشٹی کا، اس لیے اس کا ارتھ کرتے کہتے وہ کلشٹی کا والا ارتھ کر کے اور نکل جاتے تھے، تو لوگ یہی سمجھنے لگے کہ یہاں کا اس میں سمے سار میں یہی ارتھ ہے، جبھی وہ جیتن جی چھابڑا والا ارتھ ان کے دھیان میں نہیں جاتا تھا. ایسے ہی وہ ویوہار کے بارے میں ان کے دماغ میں تھا، کون سا چار پرکار کا جو ویوہار ہے نا، وہ پنچادھائی والا ویوہار، जो अपने अलग लिखे ना नए चक्र में पंचाध्यायी के नए अलग लिखे और समय सार के नए अलग लिखे, वो भी गुरुदेव की उसमें खासकर 19वें बार के प्रवचन में होगा। तो उससे क्या कन्फ्यूजन खड़ा हुआ कि एक बाबू भाई के मामा थे, रमण मामा, नाम सुना हो आपने, तो उनने गुरुदेव श्री के 19 बार के प्रवचनों को टेपों में से लिखा और प्रवचन रत्नाकर छापा ना, उसमें छापा। अब उसमें गुरुदेव ने क्या किया कि वो जब भी 11वीं गाथा आई, व्यवहारो भूयत्थो अभूयत्थो, तो उनने वहां पर वो पंचाध्यायी वाले नए गुरुदेव ने प्रवचन में कह दिए। अब उन रमण मामा ने वो पंचाध्यायी वाले नए पढ़े और उस वक्त गुरुदेव ने जो ये समय साल वाले नए हैं उनकी चर्चा नहीं की, क्योंकि आगे तो फिर समय साल वाले नए चलते हैं, तो उनके दिमाग में वो रटा गया। अब अपन ने नए चक्र देखा तो पंचाध्यायी के नए तो अलग लिखे और जे नए अलग लिखे। तो जब मैं गया वहां पर हिम्मतनगर में प्रवचन करने के लिए और मैं जब चार प्रकार का व्यवहार समझा रहा था तो 20 सभा में बोले कि गलत है, और वो उन्होंने वो बात उन्होंने बोली जो पंचाध्यायी वाले नए हो की। मैंने मामा शांति से बैठो कि नहीं मैंने पढ़ा है, मैंने देखा गुरुदेव श्री ही बोलते हैं, गुरुदेव श्री। अरे भाई गुरुदेव श्री ये बोलते हैं वो मुझे पता है, और उसके बाद आप गहराई से इसको दोनों को पढ़ो। तो समझते गुरुदेव का गहराई है जितना मैंने प्रवचन रत्नाकर का, मैंने तो अक्षर अक्षर लिखा है तो मैं गड़बड़ कैसे हो सकता हूं। लेकिन ये पता नहीं कि हमने भी उसे अक्षर अक्षर पढ़ा है, फिर तो उसका अनुवाद किया है, फिर तो उसका संपादन किया है, फिर नए चक्र अलग लिखा है, समय सार अलग लिखा है, हमें भी वो सब पता है। अब ऐसी बहुत सी समस्याएं आपके सामने आएंगी, एक मिनट हम खड़े कर रहे, हमें कह रहे, जैसे कह रहे, गुरुदेव कह रहे थे, अरे भाई सब कह रहे हैं लेकिन उसका अर्थ तो समझो। अब वही समस्या देखो यहां खड़ी हो रही, अब बुद्धिपूर्वक क्या फर्क है देखो। अब पहले कलष्टिका का बताता हूं। कलष्टिका वाले कहते हैं जो राग हमारे ज्ञान का गेय बने वो बुद्धिपूर्वक, और जो राग हमारे ज्ञान का गेय नहीं बने वो अबुद्धिपूर्वक। आया कोई समझ में कि नहीं? हमारे बहुत राग होता है, राग देख गुस्सा आता है ना। देखो तो क्यों रमेश अभी गुस्सा आ रहा तुम्हें? क्या नहीं आ रहा? देखो जरा अंदर देखो, देखो आ रहा है, सब देखो रमेश ही क्यों देखे अकेला? हेलो हुकुमचंद, बोलो अंदर गुस्सा आ रहा क्या? गुस्सा आते तो हंसते हैं ऐसे, नहीं आ रहा ना? अब शास्त्र वाले कहते हैं कि क्रोध कसार का उदय तुम्हें 24 घंटे हैं, तो गुस्सा नहीं आ रहा है कैसे हो सकता है? लेकिन वो तुम्हारे ज्ञान का गेय नहीं बन रहा। अब जो तुम गालियां बकने लगो, आंखें तरेरने लगो, तो तुम्हारे ज्ञान का भी गेय बनेगा और पड़ोसी के ज्ञान का गेय भी बनेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें तो गुस्सा आता है तो हमारे ज्ञान का गेय बन जाता है, लेकिन ऊपर से हम मुस्कुराते रहते हैं तो तुम्हारे ज्ञान का गेय नहीं बनता। होता कि नहीं होता? उन्होंने ये परिभाषा बना दी कि राग के दो भेद कर दिए कि जो राग देश माने, राग देश माने क्रोध मान माया लोभ सब, और बात तो ज्ञानी की है इसलिए मिथ्यात्व वाले नहीं लेना है, अनंतानुबंधी वाले। तो अब सुनना कि जो राग देश हमारे ज्ञान में आ रहे हैं उनका नाम तो बुद्धिपूर्वक, और जो ज्ञान में नहीं आ रहे उसका नाम अबुद्धिपूर्वक। जैतन जी छावड़ा कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, इसे क्या फर्क पड़ता है ज्ञान में आ रहा है नहीं आ रहा है? वे क्या कहते हैं, जो जिनको हम बुद्धिपूर्वक करें वे बुद्धिपूर्वक, और जिनको हम बुद्धिपूर्वक नहीं करें और उदय की बरजोरी से हो जाएं वे अबुद्धिपूर्वक। ये दोनों अलग अलग है। अभी भी हम सब लोग वो जैतन जी छाबड़ा वाला दूसरा ही अर्थ समझते हैं, लेकिन वो गुरुदेव जी जानते थे कि जैतन जी वाला तो सबको ख्याल में है, बुद्धिपूर्वक का सही कर देते हैं। जैसे मंगे तूने एक हमें धक्का दिया तो बुद्धिपूर्वक दिया, जानबूझकर माने बुद्धिपूर्वक, और लग गया, हमने दिया तो नहीं, अब इनने हमें यहां से इनका धक्का हमें लगे तो हमारा तुम्हें लग गया, तो उसे बोलते हैं अब ज्ञान का गेट, वो भी बन गया हमें, हमारा धक्का ऐसे लगा है, लेकिन हमने सोच समझ के नहीं दिया। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना, एक हमने सोच समझ कर तुम्हारा बुराई किया और एक हमारे अबुद्धि पूर्वक मुंह से ऐसा कुछ निकल गया कि जिससे तुम्हारी बुराई होगी कि तुम्हें बुरा लग गया। हमने बुरा लगने के लिए नहीं किया, समझे ना, ऐसा होता है ना। ये ऐसा अर्थ सारी दुनिया यही समझती है, और जयतन छाबड़ा ने यही अर्थ किया और पांडे राजमल जी ने वो अर्थ किया बुद्धिपूर्वक का। अब वो यहां आ गया इस गाथा की टीका में, और कलश में ज्यादा वो भर के आया, क्योंकि टीका में जो बात कहते हैं वो वही कलश में कहते हैं। तो पहले अपन जरा कलश देख लेते हैं, निकालो कलश, पढ़ो भैया जरा कलश अच्छी तरह से। कौन अच्छी तरह से गा के पढ़ेगा, गा के पढ़ेगा या स्पीकर पे आके पढ़ा हूं? चलो स्पीकर पे पढ़ो, संस्कृत का भी पढ़ो और हिंदी का भी पढ़ो अच्छी तरह गाकर। शार्दूल भी क्रीड़ित है। हाँ,
रागम समग्रं स्वयं वारं वारम बुद्धिपूर्वमपितं जेतुं स्वशक्तिं प्रशन उच्छेदन परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन नात्मा नित्य निराश्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात् तदा स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग सम्यक् ज्ञानी जीव ने बुद्धिपूर्वक राग त्याग दीना है जिसने और अबोधिक राग त्याग करने को जिसने निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को रहे निराश्रव सदा उखाड़े पर परिणति को।
ठीक है, जितना अर्थ तुम्हारी समझ में आया वो समझ लिया होगा। अब पहले एक मैं उदाहरण देता हूं कि अपने घरों में पानी भर जाता है, पहले जमाने में नाली जैसे होती थी, कहीं कहीं पानी भर जाता है और नाली अंदर होती नहीं थी, जरूरत नहीं थी बाहर निकालने के लिए कि पानी आएगा ही नहीं। अब बरसात होती कभी पानी घर में धुलाई करते धुल जाता, तो उस पानी को मान लीजिए कि 4 इंच पानी अपने घर में भर गया। अब वो नली से तो निकल नहीं सकता, अब उस पानी को निकालना है तो हम क्या करें? आवाज तो बराबर वो मशीन लाके लगा देते हैं, फटाफट निकल जाता है। पुराने जमाने में क्या कहते थे दिलीप भाई, देखा ही नहीं होगा तुमने तो पुराने जमाने, बम्बई में आगे रहने लगे तो क्या देखा थे तुम? ये गांव के आए हमारे बुंदेलखंड के लड़के और महाराष्ट्र से, इनने देखा होगा वो घर में इकट्ठा हो जाता है तो क्या करते हैं, जब ज्यादा होता है तो उसे थाली में भर भर के, क्योंकि मान लो कि 4 इंच है ना, तो थाली की वो 2 इंच होती है ऊंचाई ऐसी, तो थाली में डालते हैं तो भर जाता है, ऐसा फेंकते हैं बाहर। लेकिन फिर वो थोड़ा पानी कम हो जाता है तो थाली में नहीं आता, तो फिर क्या करते हैं, फिर कपड़ा उसमें डाल देते हैं और कपड़े से निचोड़ते हैं बाहर, फिर उस कपड़े को डालते हैं और कपड़े से बाहर निचोड़ते हैं, फिर बाकी का राग जो पानी बचा है ना, अपन को राग आ रहा है पानी वैसे निकालते हैं, फिर कुछ पानी ऐसा होता है कि उस कपड़े में भी नहीं आता जिसे अपन बाहर निचोड़ के फेंक सके, तो फिर अपन उसे क्या करते हैं कि उसी को ऐसा फैला देते हैं घर में पूरे में, तो जल्दी सूख जाता है। इस तरह उस घर से हम पानी को निकालते हैं। तब ऐसे ही कहते हैं, जब हमारा बहुत सा राग था जो हमारे बराबर ध्यान में आ रहा था, अनंतानुबंधी का राग था, मिथ्यात्व का राग, संबंधी राग था, वो तो हमने बुद्धिपूर्वक त्याग दिया उसको, जो है ना, स्वयं सहज परिणाम से कर दीना पर त्याग पर सम्यक ज्ञानी जीव ने बुद्धिपूर्वक राग, समझ में आ गया ना, सहज भाव से जितना निकलता था निकाल दिया हम। बन गए थे गुस्सा मत किया करें, गुस्सा में तो बुद्धिपूर्वक जितना गुस्सा हम को सोच सकते हैं नहीं करें तो हम अपने मन को समझा के रह जाते हैं, चुप हो जाते हैं ना, नहीं करते हैं, यानी हम जितना बनता है बुद्धिपूर्वक वो तो रहे। अब जो अबुद्धिपूर्वक रह गया, हमने गालियां नहीं बकी, हमने कोई किसी को मारपीट नहीं करी, और मन को भी काफी शांत कर लिया, फिर भी अंदर में वो कसक जिसे बोलते ना बनी रहती है, वो अंदर में द्वेष बना रहता है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे फिर भी वो ओरिजिनलिटी नहीं आती है, वो चेहरे पर एक विचित्र प्रकार की गंभीरता ओढ़े रहते हैं। क्यों? वो अंदर उतना क्रोध विद्यमान है ना, हम नॉर्मल नहीं हो पाते हैं, तो वो अबुद्धि पूर्वक राग है। अब उसका क्या करें? तो उसके लिए क्या लिखा है देखो, और अबुद्धि अबुद्धिक राग त्याग करने को जिसने क्या किया, निज शक्ति इस स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को, अपने भगवान आत्मा की शक्ति को स्पर्श किया, माने अपने त्रिकाली जो भगवान आत्मा को ज्ञान का गेय बनाया, उसमें अपनापन स्थापित किया, उसका ध्यान किया, उससे फिर वो अबुद्धिपूर्वक वाला राग नाश करते हैं। समझ गए ना? इस तरह ज्ञानी जन बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक दोनों प्रकार के राग का नाश करते हैं। अब ये बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक की चर्चा जो कलश में आई है वो टीका में भी आई है, और उन्होंने वो चर्चा की है कलश में, और कलश का पद्यानुवाद किया बनारसी दास ने, इसलिए वो बनारसी दास में भी आ गई है। बनारसी दास का छंद भी यहां दिया गया होगा, आगे देखो, पढ़ो भाई, आओ आओ जल्दी पढ़ो यहां। जेते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक तेह पर न मन की ममता हरतु है, मन देखो उद्यम करतु है, अर्थ आया कुछ समझ में? नहीं आया तो नीचे पढ़ लेना, इसलिए तो मैंने सब लिख दिया दादा जी। क्या सिद्धांता की अर्थ सीधी समझ में आना तो है नहीं, इसलिए इसे सरल सीधी भाषा में अर्थ अपन लिख दो। और वो वैसा नाटक समय सारे में लिखा वैसा नहीं लिखा, अर्थ तो वैसा ही है लेकिन एकदम सीधी सरल ये लेटेस्ट जो हिंदी है उसमें मैंने लिखा है जी कि जितने रागादि भाव मन के द्वारा जानने योग्य हैं, प्रगत हैं, उन्हें बुद्धिपूर्वक कहते हैं। देखो ये वो कलश टीका का अर्थ है ना, ज्ञानी जीव उन रागादि भावों में एकत्ममत्व नहीं करते, और जो मन के द्वारा जानने में नहीं आते ऐसे अबुद्धिपूर्वक रागादि भाव हैं, उनका नाश करने के लिए ज्ञानी जीव ने उद्यम आरंभ किया है। इस प्रकार वे ज्ञानी जीव रागादि भाव रूप परिणति का नाश करते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं और संसार सागर से पार होते हैं। ऐसे ज्ञानी जीव सदा ही निरासव कहे जाते हैं और उनका स्वयं ज्ञान विचक्षण माने चतुर पुरुष कहते हैं, सम्य दृष्टि जीव उनके गुणगान करते हैं। जेते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक, कितना क्लियर है, मन में जब हमारे मन से समझ में आ जाए उन्हें प्रगट बुद्धि पूर्वक कहते हैं। तिन परनामन की ममता हरत, ये अब देखो इसमें थोड़ी और गहराई है कि वो राग त्याग दिया मैंने वो राग नहीं होता उनके, ऐसा धोखे में मत रहे ना। क्या बता रहे? जैसे अब भरत चक्रवर्ती के 96,000 पत्नियों का राग है तो वो राग नहीं रहता है, त्याग देते हैं उन्हें तो पत्नियां भी चली जाएंगी, फिर वो दीक्षा ले लेंगे तभी त्यागते हैं। तो क्या त्याग देते हैं फिर वे कि ये मेरा है उसकी ऐसी ममत्व बुद्धि त्याग देते हैं। लिखा ना देखो, तेन परनामन की ममता हरत हुए, लिखा क्या नहीं लिखा है? अब ये कोई ऐसा जैसे ये राम रावण की कहानी नहीं है, एक था राजा एक थी रानी, ऐसे पढ़ लो इसको, एक एक शब्द आपको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा तब बात कुछ बाहर लगेगी। देखो ना, वो मनसों अगोचर जो मन के द्वारा भी जानने में नहीं आए उन्हें अबुद्धिपूर्वक कहते हैं, जिनके विनाश वे को उद्यम धरत उनके लिए कोशिश करता है। क्या कोशिश करता है? उपवास करता है, तीर्थ यात्रा करता है। क्यों? ये नहीं है, वो अपने आत्मा में अपनापन स्थापित करता है। आप समझे ना, वो यही बात पर परिणति को पतन करे, मैंने पर परिणति को छोड़ देता, पतन कर देता उसका, मोक्ष को जतन करे भोजल तरफ से संसार रूपी समुद्र से पार हो। भोजल माने संसार रूपी समुद्र, भो माने संसार और जल माने समुद्र। जल माने समुद्र के जल निधि माने समुद्र, जल माने भी समुद्र होता है ना। ऐसे ज्ञानवंत ज्ञानवंत जीव इस तरह से निराश्रव कहते हैं और इनकी जिनको सुजस सुवेक्षण करत हैं, जिनके यश का ज्ञान ज्ञानी धर्मात्मा लोग भी करते हैं। इसका अर्थ सीधा सत्य सरल ऐसा अर्थ समझ में आना चाहिए ना। अभी देखो अब अपन लौट के वहीं चलते हैं, अपन टीका पे जा रहे हैं। कलश 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 में तो वो बात आ गई ना, इसलिए अपन ने कह दिया। अब आत्मख्याति पढ़ रहे हैं अपन, पेज नंबर 42 पे देखो, शायद 42 भी नहीं 41 पे नीचे ऊपर ऊपर सबसे ऊपर ये है 40 के ऊपर। पहले टीका पढ़ते हैं, फिर जैतन जी का पढ़ेंगे, फिर सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब मैंने बहुत मरम खोल दिया है तो अपन पढ़ते जाएंगे तो भी समझ में आता जाएगा, इसलिए ज्यादा अपन रुकेंगे नहीं, पढ़ते जाएंगे। सुनो, ज्ञानी बुद्धि पूर्वक राग द्वेष मोह रूपी आश्रव भावों का अभाव होने से वह निराश्रव ही है। ज्ञानी के बुद्धि पूर्वक राग नहीं है इस अपेक्षा उसे हम निराश्रव कहते हैं। जो अबुद्धि पूर्वक राग है उस अपेक्षा से उसके आश्रव है ना। परंतु ये परंतु ज्ञानी जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने जानने माने बिल्कुल आत्मा में ज्ञान वो समझ लो के थपक शनि चल रहा है, जानने आचरण करने में असक्त रहता हुआ जगन्न भाव से ज्ञान आत्मा को देखता जानता और आचरण करता है, तब तक उसे भी जगन्न भाव की अन्यथा अनुत्पत्ति है जिसका अनुभव हो सकता है। ऐसे अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक के विधान का सद्भाव होने से उद्गल कर्म का बंध होता है। अब बता रहे जी कि वो उत्कृष्ट नहीं कर पाता है, मैंने सम्मान तो हो गया, अब छठ में सातवें स्थान में भी है, अब वो उसमें भी चढ़ गया श्रेणी में, ये सारी अवस्थाओं में वो जिसको वो राग को बुद्धिपूर्वक छोड़ा नहीं जाता, वो राग उसके विद्यमान है। बुद्धिपूर्वक तो कितना छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब छोड़ दिया ना, तो जिस राग के छूटने से ये बाह्य परिग्रह भी संयोग भी छूट जाते हैं, वो वास्तव में बुद्धिपूर्वक वाला है ना। फिर तो दसवें गुण स्थान तक रहता है ना राग है? तो वो कहते हैं उसके बिना जघन्य भाव की अनुत्पत्ति असंभव है। यदि वो छूट गया होता अंदर का बुद्धिपूर्वक राग तो जघन्य भाव नहीं रह सकता था। जघन्य भाव माने जिसके साथ में राग रहता है वो आत्मा का जघन्य भाव का परिणमन कहलाता है ज्ञान दर्शन गुण का। ऐसे अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक के विधान का सद्भाव होने से उद्गल कर्म का बंद होता है। किसको? ज्ञानी को, माने चौथे गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक। इसलिए ज्ञान को तब तक देखना जानना आचरण करना चाहिए, आचरण माने उसका ध्यान करना चाहिए कि जब तक कि ज्ञान का जितना पूर्ण भाव है उतना देखने जानने और आचरण में भली भांति न आ जावे तब तक ऐसा तुम आत्मा में लगे रहो तो वो है अबुद्धि पूर्वक। छंद में लिखा था ना, क्या लिखा था छंद में कि बारंबार अबुद्धि पूर्वमपी तम जे तुम सुशक्ति स्पर्शन मिलेगा। क्या है रमेश, दोनों रमेश आगे पीछे के, बारंबार अबुद्धि पूर्वकम जे तुम उस राग को जीतने के लिए सशक्तिम स्पर्शन अपनी शक्ति का स्पर्श करते हैं। अब स्पर्श करते ऐसे छूते होंगे ऐसे ऐसे करके नाक की नोक को ऐसे छूते होंगे तो ध्यान करते नाक की नोक का ध्यान करते हो तो ऐसे ऐसे नाक को ऐसे ऐसे करते होंगे। अरे उसे जानना माने छूना, उसमें अपनापन होना माने छूना और उसी का ध्यान वो ज्ञान का गेय बने रहना उसका नाम छूना। क्योंकि आत्मा में तो स्पर्श गुण है ही नहीं ना, जिसे छूना है ना उसमें है और जो छूना है वो ज्ञान में भी नहीं है। ये छूने की जो भाषा है तो हम छूने की भाषा समझते हैं, समझ में ना, वो ऐसा कुछ वहां है नहीं है? देखो अपन कहां पढ़ रहे थे, अब पीछे निकालो वहीं देखो है ना। उसके बाद आत्मा साक्षात ज्ञानी होता हुआ सर्वथा निराश्रव होता है, वो केवल ज्ञानी को साक्षात ज्ञानी कह रहे हैं। आपने वो पढ़ा है ना नए चक्र, तो उसमें चार प्रकार के निश्चय नए आते हैं, तो चार प्रकार के नाम गिनाओगे, कौन गिनाएगा, बोलो खड़े हो बोलो, सुनो ध्यान से सब लोग। हाँ देखो, एक जो साक्षात शुद्ध निश्चय न है, तो साक्षात शुद्ध निश्चय न का क्या स्वरूप है? हाँ बोलो बोलो, और बोलो कोई दूसरा बोलो। अरे भाई उसमें क्या, केवल ज्ञान आदि पर्यायों से युक्त आत्मा को मानना वो साक्षात शुद्ध निश्चय है, अपूर्ण शुद्ध पर्यायों को मानना वो एक देश शुद्ध निश्चय है, पूर्ण शुद्ध पर्यायों से युक्त मानना वो साक्षात शुद्ध निश्चय है। तो यही आ गया ना, उसका नाम है साक्षात, क्या ना, इसलिए उसका नाम साक्षात। उसको शुद्ध नय भी बोलते अकेला, लेकिन शुद्ध नय तो तीनों को भी बोलते हैं ना मिला के, इसलिए उससे अलग बताने के लिए उसका नाम साक्षात शुद्ध निश्चय ने रखा। देखो पढ़ा था अपन ने अभी यहां पर, उसके बाद आत्मा साक्षात ज्ञानी होता हुआ माने केवल ज्ञानी होता हुआ, आ गया ना, साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय रूप होता हुआ, ऐसा मतलब है ना। सर्वथा निराश्रव हो ही जाता है, ये सर्वथा निराश्रव वहां बिल्कुल भी आश्रव भाव नहीं है। अब वहां भी ईर्ष्यापद आश्रव को छोड़ दिया है, बोलो क्या कह रहे, अपेक्षा तो ऐसी है ही ना, वहां साक्षात आश्रव पूर्ण निराश्रव मान लिया, अपन मानते हैं नहीं, चौथे वाले को तो मानने में तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन केवल ज्ञानी को तो मानते हैं ना, लेकिन ईर्ष्यापद आश्रव वहां भी हो रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, बंद स्थिति बंद नहीं होता, मैंने उसमें स्थिति नहीं पड़ती है, तो इसलिए वो एक समय में घिर जाता है, आया हो गया, आया गया तो आया गया, तो उसे हम बंद ही नहीं गिनते, लेकिन बंद उसका नाम तो है ना प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, इतना तो होता है ना कि प्रदेश आते हैं और वो प्रकृतियों में बंटवारा होता है और स्थिति नहीं पड़ती, वो अनुभाग नहीं पड़ता, इसका नाम बंद होना हम कह देते हैं। तो कितनी कितनी अपेक्षाएं हैं बोलो, जब हम बंद नहीं होना कहें तो कितनी कितनी अपेक्षाएं, और बंद होना कहें तो कितनी अपेक्षाएं हैं। यद्यपि उक्त टीका में संपूर्ण स्थिति स्पष्ट हो गई है, तथापि जयचंद जी छावड़ा के भावार्थ से और भी अधिक स्पष्टता हो जाती है, वह भावार्थ इस प्रकार है, अपन कल पढ़ेंगे इसे।